जैसे कि आपने लास्ट सबक में हवारियों की बात पढ़ी, और दिलचस्प बात थी हवारियों की, क्योंकि वो इतने सिंसियर थे कि ईसा अलैहिस्सलाम के उठाए जाने के बाद भी उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी, उनको बड़ा टॉर्चर किया गया, अगर वो अपने दीन से नहीं हटे। फिर अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया कि अल्लाह ताला ने उनको पूरा पूरा उठा लिया। मुतवफ़ी का लफ्ज़ आया, तवफ़ा या तवफ़ी से है, जिसमें पूरा पूरा ले लेना। इसमें ये नहीं माना बनता कि जो बाज लोग सोचते हैं कि फौत होने का माना है इसके अंदर, फौत होने का माना नहीं बनता। इसमें आप लिख सकते हैं ये दलील इस बात की कि अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया, वमा कतलूहू वमा सलबूहू, साफ अल्फाज हैं, ना उन्होंने उनको कत्ल किया ना सूली चढ़ाया, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, लेकिन उनको अल्लाह ने शुबे में डाल दिया। अब उनको समझ ही नहीं आ रही कि वाकई क्या बात थी, हकीकत क्या थी। मैंने आपको बताया था कि एक हवारी की शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम की तरह कर दी गई, और उसके बाद वो सूली चढ़ने के बाद पता चला कि ये तो ईसा नहीं है, शक्ल ईसा की है, जिस्म किसी और का। तो अल्लाह ताला ने उनको पूरा पूरा उठा दिया, और वाजे अहादीस तवातुर के साथ मिलती हैं, इतनी कसरत से अहादीस हैं। एक तो मैंने आपको ये आयत भी बता दी, और कसरत से अहादीस इस बारे में है कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में आएंगे, और यहाँ पे बता दिया गया वराफियाओं का, और उठा लेने वाला हूं तुझको, अल्लाह ताला बुलंद कर रहे उनको फिजिकली भी। और फिर हमने देखा कि जो लोग जिन्होंने कुफर किया ईसा अलैहि सलाम का, उनके लिए अजाब दुनिया में भी और आखरत में भी है। याद रखिए, जो रसूलों का इनकार करने वाले होते हैं, जो कौमें जिन्होंने भी इनकार किया रसूलों का, उनके ऊपर अजाब आए। आप देख सकते हैं कौमे नूह, कौमे लूत, कौमे आद, कौमे समूद, तो इनके ऊपर बड़े बड़े अजाब आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इनकार किया मुशरिकी ने मक्का ने, तो आप जानते हैं कि उसके बाद उनके ऊपर वैसा अजाब तो नहीं आया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं थी कि आपकी उम्मत के ऊपर ऐसा अजाब ना आए जैसे पिछलों के ऊपर आया। लेकिन बदर में फिर उनके बड़े बड़े लोग मारे गए थे, और अजाब जरूरी नहीं होता कि इज्तमाही अजाब भी आए, इनफरादी अजाब भी आ सकता है, ठीक है। और इसी तरह यहूद के साथ भी इसी किस्म के मामला रहे हैं, इनको काफी ज्यादा इनके ऊपर मुसीबतें आईं। इनका जो बैतुल मकदस तबाह कर दिया गया था 70 ईस्वी में, 1 लाख से जायद यहूदी हलाक कर दिए गए थे, इनका हैकल गिरा दिया गया था और इनको भगा दिया गया था अपनी जगह से, ये फिर दुनिया में तितर बितर हो गए। अब ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं इनका नक्शा, तो आप सोचते होंगे कि अब इनको अजाब तो नहीं, हिटलर के दौर में उसने बहुत इनको कत्लेआम इनका किया, 60 लाख यहूदी जो है ना उसने खत्म किए थे, हलाक किए थे। तो ये अजाब जो आते हैं ना, इनकी कोई वजह होती है, ऐसे नहीं आते। हमें ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि कुरान हमें बताता है, हाँ ठीक है उसका जुल्म था, उसको उसकी अल्लाह के यहाँ पूछ होगी, जिस जिसने भी जुल्म किया, लेकिन वो जुल्म की जो ढील मिल रही थी उसको भी करने की, तो कोई पीछे वजह थी ना, वो इनके ये काम है जिन जो वजह बने। तो अल्लाह ताला ने बता दिया क़यामत के दिन तक इनके लिए जो है ना ये सजाएं रहेंगी, दुनिया में भी रहेंगी और आखरत में भी इनको सजा मिलेगी। तो रसूल का इनकार करना छोटी बात नहीं होती, ठीक है। तो अब जो ये सारा आप इनका देख रहे हैं, इनकी तरक्की या इनका एक जगह का मिल जाना, उसकी वजह ये है कि अब क़यामत का क़ुर्ब है ना, और दज्जाल के आने की तैयारी है। जाहिर है इनके पास कोई जगह होगी तो सबसे ज्यादा ये दज्जाल के साथ खड़े होने वाले होंगे, ये उसके सपोर्टर्स होंगे। अगर ये खुद ही सही नहीं होंगे या खुद ही इनकी हालत कुछ नहीं होगी, तो फिर कैसे सपोर्ट करेंगे। तो ये उसका साथ देने वाले हैं, और ईसा अलैहि सलाम जब आएंगे दोबारा दुनिया में, तो तब भी इनको कत्ल किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये दिजाल की पार्टी के होंगे ना लोग। और जो ईमान वाले हैं और साले अमल करने वाले हैं, अल्लाह कलाम को पूरा पूरा आजत देगा। अल्लाह जुल्म को नहीं पसंद करता, उससे मोहब्बत नहीं करता। ये क्यों यहाँ पे कहा गया? इसलिए कि जब हम कहते हैं ना अल्लाह पूरा पूरा अजर देगा, तो किसी के दिल में कभी ये बात ना आए कि हो सकता है मेरी फलां चीज उसका ना कोई अजर मिले, मेरे फलां मैंने काम किया था उसका, या ऐसे कोई अल्लाह को नाउज बिल्ला को भूल गया हो, या इस तरह की काम नहीं। अल्लाह ताला तो जालिमों से, जालिम कौन होता है जो किसी का हक मारे, अल्लाह जालिमों से मोहब्बत नहीं करता, उसको जालिम पसंद ही नहीं है, तो वो खुद क्यों जुल्म करेगा जब वो किसी किस्म के जुल्म को भी पसंद नहीं करता। और ये आयते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, और ये जिक्र हकीम है, यानी जिक्र मीन्स रिमाइंडर, जिक्र मीन्स नसीहत, और हम सबको रिमाइंडर्स चाहिए थे। वैसे हम अपने आप को कहते रहते हैं कि हम सभी शिकायत करते हैं कि हमें निसियान की बीमारी है, हम भूल जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम रिमाइंडर ही नहीं लेना चाहते। मानते हैं कि हम भूलते हैं, तो जितना भूलता है उसको तो उतना ही रिमाइंडर चाहिए होता है ना। तो ये कुरान है रिमाइंडर, ये बार बार आपको याद दहानी करेगा और हिकमतों से पूर्ण है। देखते हैं, कुल कह दीजिए, या अहलल किताब, ए अहले किताब, तालो इला कलिमतिन सवा इन बैनना व बैनकुम। ए अहले किताब, यानी जब आप उनको मुखातिब करें, जब आप उनको, मैंने आपको बताया ना इसमें आपको दावत की समझ आएगी कि कैसे दावत देनी है, दावा कैसे करते हैं। जब अहले किताब को बुलाना है, तो अब ये अहम आयत है, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे उनके साथ बात करनी है। तालो इला कलिमतिन, आओ एक कलिमे की तरफ, सवा इन बहीना ना व बहीना को, जो बराबर है हमारे और तुम्हारे दरमियान। और वो कलिमा क्या है? अल्लाह नाबूदा इल्लल्लाह, कि हम किसी और की इबादत नहीं करेंगे सिवाय अल्लाह के। ठीक है, तो आपको पता ना कि मानते तो ये भी खुदा को तो थे, और इनकी जो जो पुरानी बाइबल थी उसके अंदर लिखा हुआ, यसू ने जवाब दिया, उससे कहा कि मैं कि नहीं कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और उसकी बंदगी कर। ये उनकी बाइबल है मरकज, उसके अंदर है ये बात कि एक अल्लाह की इबादत करो। और ये पैगाम सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है, तमाम अंबिया का ये पैगाम था। सूरह नहल में अल्लाह ताला ने फरमाया 36 में, हमने हर उम्मत में रसूल भेजा कि अल्लाह की इबादत करो और ताहूत की बंदगी से इज्तनाब करो। सूरह अंबिया में आयत 25 में अल्लाह ताला ने फरमाया, आपसे पहले हमने जो भी रसूल भेजा उसकी तरफ यही वही की कि मेरे सिवा कोई इलाह नहीं, बस मेरी ही तुम बंदगी करो। इबादत होती क्या है? बहुत दफा आपको बताया, अब तो सबको याद हो जाना चाहिए, अरबिक में याद ना कर ले, कमाल जुल मा कमाल हुब, यानी अपने आप को इतना ज्यादा जुल जिल्लत से कह लें, आजी से कह लें, अपने आप को इतना नीचा कर देना मा कमाल हुब, शदीद मोहब्बत में, शदीद मोहब्बत के साथ, ठीक है, तो झुका देना, गिरा देना, अपने आप को नीचा कर देना मगर मोहब्बत के साथ, ये है इबादत। अब आप देखें, इन लोगों ने, अहले किताब ने जो शिर्क किया था, उनका शिर्क जो था वो ऐसा नहीं था कि वो कोई पत्थरों को पूजते थे या पहाड़ों को या कोई दरख्तों को या कोई ऐसी चीजों को, मगर उनका शिर्क था कि इंसान परस्ती उन्होंने की, इंसान को पूजना शुरू कर दिया, इंसान को इतना बढ़ा के वो मकाम दे दिया कि जैसे कि वो यानी खुदा के बराबर। और जब भी किसी को ऐसा मकाम दे दिया जाए कि उसका हुक्म अल्लाह के हुक्म के बराबर समझा जाए या उस जैसा समझा जाए, तो ये भी एक तरह का शिर्क है, खास तौर पे दीन के मामलात में। جہاں پہ اللہ کی کوئی بات آئے وہاں پر اللہ کی بات کو پیچھے کر کے اس کی بات کو آگے کر دینا, یہ بھی شرک ہے, شرک فی الحکم ہے, اس حکم میں آپ نے شرک کر دیا. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بات کو پیچھے کر دیا جائے؟ وہ جس نے پیدا کیا, جس نے پالا پوسا, وہ رب ہے نا, رب, وہ رب جو اس وقت بھی رب تھا جب تمہارا وجود بھی نہیں تھا, یو ڈنٹ ایگزسٹ, جب تم روحوں کی فارم میں تھے نا تب بھی وہ تمہارا رب تھا. پھر اس نے ماں کے پیٹ میں تمہاری نگہداشت کی, اس نے نک سکھ سے تمہیں سنوارا, تمہیں بنایا, تمہاری فنیشنگ کی, ایک ایک چیز تمہاری دیکھو کس طرح سے خوبصورتی سے تخلیق کی, تمہارا دنیا میں آنے کا راستہ آسان کیا, پھر یہاں پہ بھی جب آئے تو ہر چیز تمہارے لیے پہلے سے تیار کر کے رکھ دی. سورج بھی چمک رہا تھا, دن اور رات بھی تھے, چاند بھی تھے, ستارے بھی تھے, پانی بھی تھا, ہوا بھی تھی, کانے کو بھی تھا, ماں کی چھاتیوں سے بھی دودھ رواں کر دیا, اور پھر تمہارے دانت اگا دیے کہ تم اب اناج کھاؤ, غذا کھاؤ, غذا کا بھی انتظام کر دیا, پھر تمہیں چلنا پھرنا, بولنا, دیکھنا, ہنسنا, رونا, سننا, سوچنا, سمجھنا, سب سکھایا. جب تم جوان ہو گئے تو تم نے کہا ہاں نہیں وہ یہ کہتے ہیں, ان کی بات نہیں میں ٹال سکتی. یہ کیا ہے؟ بچے کہتے ہیں, بچے مجبور کرتے ہیں, کیا کریں بچوں کی, کیسے ہم بات سنتے ہیں؟ بچوں نے آپ کو پیدا کیا تھا یا آپ نے بچوں کو پیدا کیا؟ چلو والدین کی بات کر لیتے, والدین نے کہہ دیا, لیکن اللہ نے حکم دیا نا والدین کی مانو. ویسے ہر کام میں نہیں والدین کی مانتے, لیکن اس کام میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بات آ جائے وہاں پہ والدین کی بات پھر اچھی لگنے شروع ہو جاتی, کیونکہ خود کا دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے نا. یاد رکھیے, کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے اللہ کی نافرمانی میں, یعنی حدیث ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی اطاعت ہے ہی نہیں, مخلوق کی آپ نے فرما برداری نہیں کرنی, فی معصیت الخالق یعنی خالق کی نافرمانی میں, کہ خالق کی بات آ جائے, وہ خالق ہے, اس کے آگے شوہر کی بات نہیں چل سکتی, اس کے آگے والدین کی بات نہیں چل سکتی, بچوں کی باتیں نہیں چل سکتی, لوگوں کی باتیں نہیں چل سکتی, لیکن ہم کتنے آرام سے اٹھا کے رکھ دیتے ہیں اللہ کی بات کو ایک طرف, اور باقی سب کی باتیں امپورٹنٹ ہیں. رہنا جو ان میں ہم نے کیا کریں, ان میں رہنا اس کی کتنی فکر ہے, جس کی زمین کے اوپر چل رہے اس کی نہیں فکر, جس کے آسمان کے تلے تم اپنی زندگی گزارے اس کی نہیں فکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا سورہ ملک میں, کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ زمین میں ان کو دھسا دے, ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دے, آسمان ان کے اوپر پھٹ پڑے, بے خوف ہو گئے؟ کیسے فیصلے کرتے ہیں؟ تو جن میں رہنا ہے ان کی بڑی فکر ہے کہ یہ ٹیڑھی نظر سے نہ دیکھیں, ان کو ناپسند نہ آ جائے, ان کو ناگوار نہ گزر جائے, آئے ان کے چہروں پہ کہیں تیوری نہ آ جائے, کہیں بل نہ پڑ جائے, یہ مجھے اپنی دعوتوں پہ بلانا نہ بند کر دے, کتنی ان کی فکر ہے, نہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, مجھ سے فرینڈ شپ نہ توڑ دے. وہ یہ نہیں دیکھتے سانس جس کے کنٹرول میں کہیں وہ نہ ناراض ہو جائے, جسم جس کے حکم پہ چل رہا ہے کہیں وہ نہ ناراض ہو جائے, زمین جس کے حکم پہ ٹھہری ہوئی کہیں وہ نہ ناراض ہو جائے, آسمان تھما ہوا ہے جس کے حکم سے کہیں وہ نہ ناراض ہو جائے. یہ کتنی دفعہ سوچتے ہو؟ تو اللہ نعبد الا اللہ, یہ ہے توحید, یہ لا الہ الا اللہ, کہ ہم نہیں عبادت کریں مگر اللہ. آپ سوچیں گے آج کے تو نہیں کہتے, یہ تو کلمہ سوان ہے ہی نہیں ہے, یہ تو برابر ہے ہی نہیں. نہیں, اس لیے برابر کہ دیکھیں خدا کو تو مانتے ہیں نا وہ, کہ خدا ہے, اس کے سوا کسی اور کو نہ مانو. یعنی سب سے پہلا پیغام تم نے توحید کا دینا, یہاں سے نہیں سٹارٹ کرنا کہ آپ شراب نہیں پھر پی سکتے, دیکھیں پھر آپ کو اپنے ہسبینڈ کو چھوڑنا پڑے گا اگر آپ اسلام لے آئیں. نہیں, توحید سے شروع کرو, توحید سے. जैसे वो एक आदमी था, वो आ रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कि ईमान लेकर आए, तो कुछ लोगों ने उसको कहा तुम्हें पता है इस्लाम लाने में क्या है, तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ये। उसने कहा हाँ छोड़ दूंगा, हाँ ये भी छोड़ दूंगा ये। आखिर में उन्होंने कहा तुझे शराब छोड़नी पड़ेगी। उसने कहा वो नहीं मैं छोड़ सकता, मैं वो नहीं छोड़ सकता। वो वापस चला गया और उसको मौत आ गई उसी कुफर में। तो सबसे पहली चीज जिस पे एम्फसाइज करना है और जिसकी तरफ बुलाना है वो तौहीद है। और याद रखिए एक बात, तौहीद के जिमन में रिगार्डिंग तौहीद बहुत अच्छी तरह जो हमें बात समझनी है, तौहीद ये नहीं है कि अल्लाह इला है, अल्लाह खुदा है, ये तौहीद नहीं है मुकम्मल। अगर कोई ये समझता है ना कि ये बस तौहीद हो गई, तो वो उसने तौहीद को समझा ही नहीं है। तौहीद समझनी है ना, तो ये अपने हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तौहीद को तो समझे हम। तौहीद समझनी है तो कलमे में पहला पार्ट क्या है, टू पार्ट्स है ना कलमे। चलो पहला वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़ दें अभी, सिर्फ पहला पार्ट अगर आप लें तौहीद वाला पार्ट, तो उसमें क्या है, उसके दो कंपोनेंट्स हैं। ये बातें ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी समझने की है, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही। पहला कंपोनेंट क्या है, ला इलाहा। पहले आपको क्या करना है, डिनाई करना है, रिफ्यूज करना है, निगेट करना है तमाम इलाहों को जो भी एग्जिस्ट करते हैं, वो पैगंबर है, वो कोई औलिया अल्लाह है, वो कोई बुत है, कोई पत्थर है, कोई दरख्त है, कोई सांप है, कोई चूहा है, उनकी भी तो पूजा होती है। सबको कहना है नहीं है कोई इला, उसके बाद कहना है इल्लल्लाह, इला सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह इला है। ये हमारा कलमा नहीं है, हमारा कलमा पहले निगेशन है। निगेट करोगे तो उसके बाद फिर आप तौहीद का इस बात करोगे, अफर्म करोगे तौहीद को। आपने अगर निगेशन नहीं की ना, मैं यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, पढ़ा था ना सूरह बकरा में, तागूत का पहले इनकार, तागूत का पहले कहना कि मैं किसी भी हस्ती को जो अपनी इबादत के लिए बुलाए, जो अपनी इबादत का कहे, उसको नहीं मानती, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो खुदा कहते हैं कि एक खुदा है जी, लेकिन और भी हैं, यहां पे तो जाके टांग टूटती है, और भी हैं। कलमा आपने शुरू ही करना किससे है, ला इलाहा से, ला से, ला ला ला। इस ला को नहीं समझे, अपने मुसलमानों में बहुत सारे लोग हैं, हाँ अल्लाह है, खुदा वो है वो, लेकिन यहां पे गड़बड़ आ गई फिर, लेकिन ये भी है, ये भी है, इससे मांगो, इससे मुरादें पूरी होती हैं, इसके आगे माथे टेको, ये खुश हो जाएगा तो सब काम बन जाएंगे, इसके ऊपर भरोसा करो, इसने चाह लिया तो काम हो गया, 24 घंटे में काम हो जाएगा मेरा। कहीं कोई कब्र है, कहीं कोई खड़े हुए इंसान है, कहीं पैसा है, कहीं लोग हैं, तो बहुत सारे खुदा बनाए हुए, पैसा भी खुदा बनाते हैं लोग। यहां पे देखिए ना, वला नुशरिक बिही शैअन, किसी चीज को, चीज किसी चीज को भी खुदा का शरीक नहीं करेंगे। तो चीजों के अंदर पैसा तो सबसे पहले है, पैसा तो सबसे पहले है जिसको के खुदा के बराबर लाए उसने। पैसा जहां से मिल रहा है उधर ही सजदे हैं, पैसा कहीं नुकसान ना हो जाए उसकी खातिर फिर कुछ भी करने को तैयार है। पैसे की पूजा होती है, पैसे को सामने रख के सजदे नहीं किए जाते, मगर ये जो माल है ना, इसका भी बुत है जो दिलों के अंदर खड़ा होता है, जिसको दिन रात उसके आगे माथा टेकते हैं। पैसा पैसा, पैसे के मुताबिक हर एक को देखते हैं, पैसा उनका खुदा है बस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हलाक हो गया अब्दुल दिरहम, हलाक हो गया अब्दुल दिनार, तो क्या आज हलाक नहीं हुआ अब्दुल डॉलर? हाँ डॉलर का बंदा नहीं हलाक होने वाला। तो अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, तो पहले डिनाई करो सबको, मुझे ये कब्र वाले से नहीं मिलना, मुझे इस आदमी के पर भरोसा करके नहीं मिलना, मेरे ये काम नहीं बना सकता, चाहे वो कितना ही कह रहा है 24 घंटे में आपका काम हो जाएगा, महबूब कदमों में होगा फला, नहीं, कोई इलाह नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है मगर अल्लाह की जात। और इबादत के अंदर याद रखिए ये सारे जो रिचुअल है ना, मरासिम में इबादत, ये सब इसमें आ जाते हैं, सजदा करना, दुआ मांगना, ये सब इबादत के मरासिम है, रिचुअल्स हैं इबादत के, उसके कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है, इबादत इनके जरिए की जाती है, तो जराए हैं इबादत के ये, आप जिसके लिए ये करेंगे आप उसकी इबादत कर रहे हैं, सिंपल एज दैट। आप किसी के आगे सजदा करते हैं आप उसकी इबादत कर रहे हैं, किसी के आगे झुकना, किसी से दुआएं मांगना, हमारी आपके आगे, आपकी अल्लाह के आगे, तो हम तो आपके आगे पेश कर रहे हैं ना, किसको कहते हैं, उन्हीं के आगे हाथ उठा कर जब आप एक कब्र पे उनकी तरफ मुंह करके हाथ उठा के कह रहे थे हमारी आपके आगे, तो किसको कह रहे हैं, किससे दुआ कर रहे हैं, बैठ के यहां पे बैठ के और कहना कि या अब्दुल कादिर जिलानी, या गौसे आजम मदद, या खिजर मदद, वो समंदरों के ऊपर उनका वो है, या अली मदद, या फला मदद, या रसूलुल्लाह मदद, कुछ भी कह दे, याद रखिए कोई इंसान, चाहे वो पैगंबर है, चाहे वो सहाबी है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो शेख है, चाहे वो इमाम है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो माँ बाप है, चाहे वो हस्बैंड, नहीं कोई इबादत के लायक मगर अल्लाह, ठीक है, वला नुशरीक बिही शैय, हम किसी को भी नहीं शरीक करते उसके साथ। ये मामला इतना सेंसिटिव है कि शिर्क का जहां पे शायबा भी हो ना, शक भी हो, वो भी नहीं करना। अब देखिए एक हदीस में आता है, अब सामने नहीं है मेरी हदीस, में अपने अल्फाज में आपको बता रही हूँ कि एक आदमी मक्खी की वजह से जहन्नुम में गया, कैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो आदमी गुजर रहा था किसी बस्ती से, उन्होंने कहा आप यहाँ से गुजर नहीं सकते जब तक कि हमारे जो बुत हैं उनके ऊपर कोई चढ़ावा ना चढ़ाए, उसने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, उन्होंने कहा कुछ ज्यादा नहीं है तो तुम एक मक्खी मार के वही हमारे बुतों के आगे चढ़ा दो, उसने कहा ठीक है, उसने वो मक्खी मारी और उनके बुतों के ऊपर चढ़ा दी, उसकी वजह से ही वो जहन्नुम में गया, नहीं किसी और के नाम की नजर मगर अल्लाह की, नहीं किसी और के नाम की कसम मगर अल्लाह की, ठीक है। तो ये बहुत सेंसिटिव मामला है क्योंकि अल्लाह शिर्क को नहीं बख्शेगा, बाकी जिस गुनाह को चाहे वो बख्श दे। आगे हम सूरह निसा में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे, शिर्क मगर अल्लाह ने बख्शना नहीं, इसको लेके अगर मर गए ना वो बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी मुसीबत है। तौहीद को समझो, समझो शिर्क क्या है, हम क्या दूसरों को बताएंगे, हमें तो खुद ही नहीं पता, हम क्या उनको दावत देंगे कि शिर्क ना करो, हम खुद शिर्क में मुलविस हैं, इधर कलमा भी पढ़ते हैं उधर माथे भी कहीं और टेकते हैं। देखिए इतनी तक ये सेंसिटिव बात को सोचें, आपके एक जगह मैंने पढ़ा कि अकबर के जमाने में उसने कहा कि ऐसे कोई कोई कलिमात लिखाए जाएं जो यानी मोहर वगैरह के लिए ना, शाही मोहर के लिए कोई ऐसे अल्फाज होने चाहिए जैसे आप देखते हैं, तो उलमा ने मुशावरत शुरू कर दी कि क्या अल्फाज होने चाहिए शाही मोहर के लिए, तो एक आलिम ने खड़े होके कहा मशवरे के बाद कि अल्लाह हु अकबर, ये बड़े अच्छे कलमात है तो ये लिखवाने चाहिए, तो उन्होंने सबने कहा कि हाँ भाई ठीक है। अब एक आलिम जो थे वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं ये इबारत सही नहीं है, अल्लाह हु अकबर, अल्लाह अकबर है, अल्लाह सबसे बड़ा है, और दूसरा अल्लाह अकबर यानी ये भी माना है कि अकबर बादशाह, अल्लाह अकबर बादशाह क्योंकि उसका नाम भी अकबर था। तो अकबर ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा कि ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया, और खामोशी के बाद फिर उसने कहा कि ठीक है कोई और अल्फाज बयान किए जाएं, फिर आप ही बताएं क्या रखें, तो उसने कहा वला जिक्रुल्लाह अकबर, ये लिख रखते अल्लाह का जिक्र बड़ा है। उसने कहा ठीक है। जब सारे लोग चले गए तो अकबर बादशाह ने उन आलिम को बुलाया और उनको कहा कि मैंने तो इस नीयत से नहीं ये करा था कि अल्लाह अकबर का माना मैं अपना समझ रहा हूँ कि मैं अकबर हूँ। तो उन्होंने उन आलिम दीन, उनका नाम इब्राहिम था, उन्होंने नडर होके ये तारीखी अल्फाज कहे थे कि ए शाहे हिंद, उस जात वहदहू ला शरीक को अपनी जात में जरा सा भी जहां शिर्क का इम्कान भी होना, इम्कानी शिर्क भी उसको नापसंद है, जहां पे जरा सा शिर्क हो वो भी उसको नापसंद है। तो उन्होंने कहा कि ये शिर्क का शुबा इसमें हो सकता था, तो जिसमें शिर्क का शुबा भी हो वो बात भी सही नहीं है। तो इससे आप सोचें कि बाज अल्फाज हम ये कहते हैं कि जो हम अल्फाज समझते हैं कि ये अल्फाज कोई बात नहीं, हमारी जुबान का हिस्सा है, तो हम उनको आराम से बोल जाते हैं। तो ये देखना चाहिए कि ऐसे कोई भी अल्फाज जिसमें जरा भी आपको लग रहा हो कि यहां पे कोई शिर्क की बात हो सकती है वो भी नहीं कहने चाहिए, यहां पे कोई इम्कान हो सकता है शिर्क का वो भी नहीं बोलने चाहिए। यानी कि आपकी नियत होती है, नियत नहीं, जैसे मैंने आपको बताया उसने कहा मेरी नियत तो नहीं थी इस तरह की, मैंने कहा नहीं, अल्लाह ताला को इम्कानी शिर्क भी नहीं पसंद। हम इस तरह की बातें ना करें, हाँ मुझे इस दवाई से ही आराम आया, नहीं, अल्लाह ने इसके अंदर शिफा डाली है मेरे लिए, अल्लाह ने डॉक्टर के हाथ में शिफा। हालांकि हम कोई, मैं आपको इसलिए ये बात क्या सुनाना चाहती थी कि देखिए हमारी भी नीयत थोड़ी होती है, हम लेकिन अपने थोड़े से अल्फाज को अगर हम चेंज कर लेना तो बेहतर है, ठीक है, अपने अल्फाज में ये लेकर आए कि अल्लाह के करने से ये हुआ, अल्लाह ताला की हेल्प से ये काम पाया, तकमील को पहुंचा, यानी कि मैंने किया, उसने किया, फलाने ने कर दिया, फलाना ना मदद करता, ये ना होता, फलाना नहीं, अल्लाह की मदद से, ठीक है। ये नहीं कह रही कि आप लोग शिर्क कर रहे हैं इस तरह, नहीं, मगर इम्कान भी जिसमें हो सकता है, इसमें जरा सा भी शाइबा हो सकता है वो छोड़ देना, ऐसे तमाम मुहावरे छोड़ दे जो अल्लाह की शान के लायक नहीं। हम जब कहते हैं सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है हर ऐब से, हर कमजोरी से, हर ऐसी चीज से जो कि उसकी शान के लायक नहीं है, उससे वो पाक है, तो फिर क्यों ऐसे कहते हैं अल्लाह मियाँ की गाय, क्यों कहते हैं अल्लाह के पिछवाड़े में, ये किस किस्म के मुहावरे हैं, पता है किसकी बात कर रहे, कुछ समझ भी है किसका बोल रहे, यानी कोई दूर हो तो कह देते हैं ये अल्लाह मियाँ के पिछवाड़े, वो खुदा का खौफ नहीं है। ये अपने मुसलमानों के मुंह से जब मैं ये अल्फाज सुनती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ, इनको पता भी है ये क्या कह रहे हैं। इसी तो किस्म के और भी कई मुहावरे, ये तो मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही रख दिए जो तो मेरे जहन में आए। तो ये बातें मामूली नहीं है, ये बातें वो हैं जिनके ऊपर बड़ी पकड़ हो सकती है, ये मुंह से बोले वाला बस ऐसे अंधाधुंध बोलते रहे। फिर इसी तरह आप देखें जो लोग गाने सुनने के बड़े शौकीन होते हैं, कितने सारे उनके अंदर शायरी के अंदर शिरकी अल्फाज होते हैं, सजदा मैं तुझे कर रहा हूं, पता नहीं क्या क्या मेरे सामने, मुझे नहीं आते मगर सजदे की हद तक, मैं तेरी पूजा करता हूं इस हद तक कह दिया जाता है अशआर में, और हम जी बड़े मजे से वो गाते रहते हैं, शादियों पे गा रहे हैं, उस पे जा रहे हैं, और क्योंकि वो उनके होते हैं उनसे हमने ले लिए, उनकी फिल्मों से देख के, उनकी उससे देख के, तो हम भी गाते रहे, मगर मजा लगे कोई किसी को ये समझ हो कि मैं बोल क्या रहा हूं, मैं क्या कह रही हूं, अंधाधुन बस गाते चले जाते हैं। तो ये सब चीजों को सोचना चाहिए, इसीलिए हमने अकीदा एक सब्जेक्ट रखा है कि हमें समझना चाहिए हमारा अकीदा है क्या, हमें तो पता ही नहीं, हम तो पता नहीं क्या समझ के बैठे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं। तो बहुत जरूरी है कि समझा जाए शिर्क किस चीजों के अंदर होता है, मुझे शिर्क से बचना है, जिसमें शुबा भी है मुझे वो काम नहीं करना, शिर्क का शिर्क माफ नहीं होना। अब इसके ऊपर बहसें करने बैठ जाए, नहीं ये तो शिर्क नहीं, नहीं वो तो शिर्क, आप ये सोचें कि जिस चीज के अंदर आपको शुबा हो जाए कि इसमें पेशाब पड़ गया, नहीं पड़ा, चलो
आप जी आप कैसे कह सकते हैं, आप यकीनी तो नहीं कह सकती, आप ऐसे तो नहीं, नहीं शक है सिर्फ, तो पी लेंगी क्या उसको? नहीं पियेंगी ना। लेकिन जो अल्लाह के साथ शिर्क के कलिमात है, शुबा भी हो जाए उससे दूर भागे। लेकिन कहते नहीं पैसे शुरू कर देते हैं, नहीं जी इसके अंदर कहां से शिर्क है, ये आप कैसे कह सकते। भैया आप छोड़ दें उन चीजों को जिनको आपको जरा भी शक पड़ गया। हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि हम अल्लाह के हजूर खड़े हो किसी ऐसी चीज के साथ जिसमें जरा बराबर भी शिर्क हो। लेकिन शिर्क वो जहर है जो सब कुछ का बेड़ा गर्क कर देगा। जितनी मर्जी नेकियां कर लो, इबादतें कर लो, नमाजें पढ़ लो, कुराने पढ़ लो, नफली रोजे भी रखो, रमजान के भी रखो, हज उम्रे पे उम्रे कर रहे हैं, सब कर लो, अगर शिर्क जरा भी हो गया ना तो सब कुछ गारत, सब खत्म। अगर उसी के पर मर गए तो, अगर तौबा किए बगैर मर गए, सब खत्म, कोई वैल्यू नहीं है अल्लाह के हाँ इन चीजों की, नमाजों और इनकी। बहुत नेक हैं, बहुत हिजाब लेते हैं, बहुत ये करते हैं, कुछ वैल्यू नहीं है अगर शिर्क आ गया तो। इसलिए शिर्क से बचें, शिर्क को समझें, शिर्क को अपने अकीदे से निकालें। बहुत सारे लोग हैं जो मुसलमान भी हैं, अल्लाह पर ईमान रखते भी हैं, लेकिन साथ शिर्क भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं। वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दूनिल्लाह, और ना बनाए बाज बाज को, हम में से बाज बाज को रब ना बनाए अल्लाह के सिवा। ये क्यों कहेंगे? इसलिए क्योंकि मुसलमान जानते थे कि ईसाइयों के अंदर ऐसे लोग हैं जो अपने ही बड़ों को, अपने उलमा को और अपने राहिबों को, अपने सेंट्स को रब बनाते हैं। कैसे रब बनाते हैं? ये क्वेश्चन उन्होंने किया, हम कैसे अदी बिन हातिम, हातिम ताई का नाम सुना है आपने? हाँ, तो हातिम ताई के जो बेटे थे, हातिम ताई भी ईसाई थे, ईसाइयत में वो तो फौत हो चुके थे, उनके जो बेटे थे अदी, वो बहुत बाद में मुसलमान हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में ही, मगर मुसलमान हुए थे बहुत बाद में। उन्होंने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, हम तो नहीं अपने उलमा को, राहिबों को रब तो नहीं बनाते थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों, क्या तुम ऐसे नहीं करते थे कि जो वो हलाल कहते तुम उसको हलाल करते, और जो वो हराम कर देते तुम्हारे लिए तुम उसको हराम कर देते थे? वो कहते हाँ ये तो था। आपने फरमाया यही तो फिर शिर्क है, यही तो फिर उनको रब बनाना है। रब मतलब क्या होता है? मालिक, खालिक, मुदब्बिर, हाकिम, जिसके पास अथॉरिटी है कि वो आपको बताए ये हलाल है और ये हराम है। ये अथॉरिटी सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, कोई और ये अथॉरिटी नहीं रखता, और ना ही किसी को इंसान ये अथॉरिटी दे कि आप बताएंगे हलाल क्या है, आप बताएंगे हराम क्या है, आप हमारे लिए फैसले करें। आप मेरे हस्बैंड हैं, तो आपने जब हलाल कर दिया तो हलाल है मेरे लिए। आपने कह दिया नहीं बेगम ये तुम्हारे लिए हराम है, अगर तुमने ऐसा किया तो वो मेरे लिए हराम हो गया, तो रब किसको बनाया हुआ फिर? इसी तरह उलमा है, इसी तरह इमाम है, इसी तरह कोई भी है, इवन पैगंबरों के लिए भी ये हक नहीं है कि आप उनसे पूछें कि आप बताएं आप हलाल और हराम। सिर्फ ये अल्लाह का हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपने ऊपर शहद हराम कर लिया तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, क्या फरमाया सूरह तहरीम में, क्या नबी आप क्यों उस चीज को अपने ऊपर हराम करते हैं जो अल्लाह ने आपके लिए हलाल की, आपने कैसे हराम कर ली? इसलिए किसी नबी के पास भी अथॉरिटी नहीं कि वो जिस चीज को चाहे हलाल कर ले, जिसको चाहे हराम कर ले, चाहे वो खाने पीने में है, चाहे वो पहनने ओढ़ने में है, चाहे वो कमाइयों में है, चाहे वो किसी किस्म की चीज में भी। जो अल्लाह ने हलाल की वो हलाल है, जो अल्लाह ने हराम कर दी वो हराम है। ठीक है, तो वो चूंकि ये काम करते थे तो उनको कहा गया कि वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दूनिल्लाह, हम ना बनाए बाज, हम में से बाज को अरबाब रब ना बना ले अल्लाह के सिवा। ये अल्लाह ताला का ही हक है। ठीक है, फइन तवल्लौ, फिर अगर वो मुंह मोड़े फिर भी नहीं वो मानते बात को, आपने उनको बुलाया और उनको कहा कि हम नहीं इबादत करते मगर सिर्फ अल्लाह की, तो आओ ये एक कलमा है जो सवाइम में बहीना ना हुआ बहीना को, यानी
जब आप उनसे बात करें तो कॉमनैलिटी पे पहले बात करें, उस चीजों पे बात करें, उन पे ना बात करें जिससे बात करते ही झगड़ा शुरू हो जाए, कॉमन चीजों पे। तुम भी खुदा को मानते हो ना, हम भी मानते हैं, तुम भी ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हो ना, हमारे नजदीक भी ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल है, तुम भी मानते हो ना ईसा अलैहिस्सलाम ने वापस आना है, हम भी मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने वापस आना है। स्टार्ट ही से ना करें, तुम गलत कहते हो कि वो सूली चढ़ाए गए, वो तो कोई नहीं सूली चढ़ाए गए, नहीं, कॉमन बातों से बात शुरू करें। तो मानते ना ये खुदा है, हाँ मानते हैं वो खुदा, अगर तुम इनकार थोड़ी करते हैं, तो यहां से बात करें। ये हिकमत होती है दावा देने की, ये हिकमत होती है लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने की, अल्लाह के साथ जोड़े लोगों को, ठीक है। सबसे पहले तौहीद की बात करें लोगों के साथ, तो ये है जिसके साथ बात स्टार्ट करनी चाहिए कि कॉमन ग्राउंड्स उनको ढूंढने चाहिए। मगर एक बात याद रखिए, कॉमन ग्राउंड्स का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप ही कॉम्प्रोमाइज शुरू कर दें। देखो हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई डिफरेंस ही नहीं है, नहीं कितना बड़ा डिफरेंस है, कितने बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस तो हैं, नहीं तुम भी ठीक हो हम भी ठीक है, ये कहां से कलमा हमने कर लिया, नहीं देखो गलत किसी को भी नहीं हम कहते, ये कहां से, ये सारे जुमले गलत हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हाँ कॉमन बात करनी है, जो सेम है उनके और हमारे दरमियान वो बात पे पहले शुरुआत करें, मगर कॉम्प्रोमाइज ना कर लेना कहीं अपने दीन पे, कि उनको बुलाते बुलाते जैसे उस बादशाह ने सोचा कि अब हमने तबलीग कैसे करनी है, तो इसपे लोगों को दीन आसान करके बताया जाए, तो शरीयत मूसवी को तो साइड पे डालो, सारी चीजों को कर दो, चलो बुत भी बना दिए, ये भी तस्वीरें भी बना दी, सब चीजें कर दी, तो चलो लोग खुश हो जाएंगे और ईसाइयत इख्तियार कर लेंगे। तो हमारा ये मकसद नहीं कि किसी तरह हम इस्लाम को ही ट्विस्ट कर दें और फिर इनको ऐसे पेश करें, इस तरह इनके लिए इजी हो जाएगा ना तो फिर ये आ जाएंगे, नहीं, क्योंकि किसी को मनवाना हमारा मकसद नहीं है, कि अल्लाह को इसकी कोई परवाह नहीं है कि कोई माने कि नहीं माने, अल्लाह को नहीं परवाह, उसकी बादशाहत में कोई फर्क नहीं पड़ जाना, तुम मानते हो तुम अपना भला करते हो, तुम नहीं मानते तुम अपने साथ बुरा करते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने ऑफर किया था, आप ये मौजजा दिखा दें, वो कर दें, ऐसे बना दें, हम फिर मान जाएंगे, तो नहीं अल्लाह ने दिखाया, आप एक दफा हमारे बुतों की पूजा कर लें, हम एक दफा आपके की कर लेंगे, नहीं, तो तौहीद पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ठीक है। तो आपने ऐसे नहीं बिछ जाना उनके सामने कि इतने ही बिछ गए कि अपना भी दीन छोड़ दिया, अपना भूल ही गए, उनको मनाते मनाते, हमने मनाना नहीं है, हमने पहुंचाना है, समझ आई, देयर इज अ डिफरेंस। मनाने में क्या होगा, आप अपनी चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, पहुंचाने में क्या, ये है भाई मैसेज, लेकिन हिकमत के साथ पहुंचाएंगे, ये है मैसेज, और ये मैसेज है, देखो इसके अंदर ये चीजें कॉमन है हमारी और तुम्हारी, ठीक है, वो आगे आप लेकर जाएंगे, समझ आ गई बात। इन तवल्ला फकूल शादो भी अन्ना मुस्लिम, अगर वो फिर भी नहीं समझते हैं बात को, तो आपने झुक नहीं जाना, आपने कहना मैं तो मुती और फर्मा बरदार, ये बात पहले और किसने कही थी, तुम गवाह रहना कि हम मुस्लिम हैं, ये हवारियों ने कही थी, तो हवारी जो जीसस के, ईसा अलैहिस्सलाम के जो सबसे ज्यादा क्लोज थे और जो सबसे सच्चे थे, उन्होंने भी ये बात कही, असल तो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले तो वही थे ना, तो हम भी वही बात कहते हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने कही थी, और उन्होंने यही कहा था कि हम मुस्लिम हैं, तुम गवाह रहे ना, इससे ही पता चल जाता है कि हम गिव अप नहीं करेंगे अपना, अपने जो अपना दीन को, या अपने जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, या अपनी किसी भी चीज को, अपने दीन की हम गिव अप नहीं करेंगे तुम्हें दावत देने के लिए, तुम्हें मनाने के लिए, ठीक है, हमने नहीं अपना दीन छोड़ना।